आरवी ने सुभाष जी के पैरों की मालिश की, फिर उनके पास ही बैठ गई और वो उसे उस बुक की स्टोरी सुनाने लगे जो वो पढ़ रहे थे। वहीं शान बेहद गुस्से में था। उसने एक नज़र सोती हुई अंशिका को देखते हुए मन ही मन कहा, आप क्यों उसके करीब जा रही हैं? वो आपको बस मोहरा बना रही है मुझ तक पहुंचने के लिए, और मैं आपके प्यार के आगे इतना मजबूर हूं कि आपको उससे दूर भी नहीं रख पा रहा हूं। एक ही दिन में आप उसे इतना चाहने लगी हैं कि आप उसके साथ सो भी गईं, वरना आप छाया के साथ भी नहीं सोती हैं। शायद एक माँ की कमी सच में कोई पूरी नहीं कर सकता, पर जब आपको इस दुनिया में लाने वाली ही आपकी माँ नहीं बन सकी तो ये आपकी माँ कैसे बन सकती है? जानती ही कितना है ये आपको, बस कह देने से तो कोई किसी बच्चे की माँ नहीं बन जाती। उसके लिए दिल में प्रेम और मातृत्व का होना जरूरी है। ये बात मैं भी मानता हूँ कि जन्म देने से ही माँ बच्चे का रिश्ता नहीं बनता, उनका बंधन दिल से और प्यार से जुड़ा होता है, पर वो आपकी माँ नहीं है और ना ही कभी बन सकती है। वो जानती है कि आप मेरी कमजोरी है और वो उसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए आपका सहारा ले रही है, आपको ढाल बना रही है ताकि मुझ तक पहुंच सके, और आप ये बात समझने के लिए अभी बहुत छोटी हैं। इस दुनिया में कोई रिश्ता बिना मिलावट का नहीं होता। हर इंसान का कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता है उसके हर काम में। माँ ना बचपन से माँ के प्यार के लिए तरसी है, इसीलिए जब आपको एक आशा की किरण दिखी और वो आपकी जिंदगी में आई तो आप उनमें अपनी माँ ढूंढने लगी। पर बेटा, जैसे आपके डैड की किस्मत में माँ का प्यार नहीं था, वैसे ही आपके नसीब में भी माँ की ममता नहीं है। मत आने दीजिए उसको अपने करीब, मत बांधिए कोई झूठी उम्मीद। जिस दिन ये उम्मीद टूटेगी आप भी टूट जाएंगी, पर आपके डैड कभी आपको टूटने नहीं देंगे। आपको उससे दूर रहना ही होगा। शान ने मन ही मन निश्चय किया और फिर बाथरूम में चला गया। दिमाग पहले ही ज्वालामुखी जैसे फट रहा था तो वो शावर के नीचे खड़ा हो गया, खुद को शांत करने की नाकामयाब कोशिश करने लगा। उसे शावर के नीचे खड़े खड़े आधे घंटे से ऊपर का वक्त हो गया तो उसने शावर ऑफ किया और टावल लपेटकर और दूसरे टावल से अपने गीले बालों को पोंछते हुए बाहर निकला तो देखा अंशिका उठकर बैठी हुई थी और मुंह ऐसे बनाया हुआ था जैसे बस रो ही देगी। शान तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए पुचकारते हुए बोला, हमारी अंशु को क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? अंशिका ने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा और मुंह पिचकाते हुए बोली, मम्मा फिर से अंशु को छोड़कर चली गई। आपने उनसे फाइट की ना, इसीलिए मम्मा एंग्री होकर चली गई। अब वो वापस नहीं आएंगी बेबी के पास। डैडू, बेबी को मम्मा चाहिए, मम्मा को ले आइए ना, बेबी मम्मा के बिना नहीं रहेगी। मम्मा बहुत अच्छी है, अंशु को लव भी करती है, लोरी भी सुनाती है। प्लीज डैडू, मम्मा को वापस ले आइए ना। उसकी प्यारी प्यारी आंखों से आंसुओं की बूंदें बहने लगीं। वो उसकी गोद में बैठी सुबकने लगी। कुछ पल तक शान खामोश सा उसे देखता रहा, फिर उसने उसके आंसुओं को साफ करते हुए बड़े प्यार से कहा, आपकी मम्मा कहीं नहीं गई हैं बच्चे, वो आपकी बड़ी दादी के पास हैं, अभी वापस आ जाएंगी, बस आप रोना बंद कीजिए। उसकी बात सुनकर अंशिका ने नम आंखों से उसे देखते हुए सवाल किया, मम्मा बेबी को छोड़कर नहीं गई है? नहीं बेटा, मम्मा हमारी प्रिंसेस को छोड़कर कहाँ जाएंगी, वो तो यहीं है नीचे दादी के पास। शान ने एक बार फिर उसको बड़े प्यार से बताया तो अंशिका ने मासूमियत से कहा, आपने मम्मा को सॉरी बोल दिया, आपने सुबह उन पर गुस्सा किया था ना, अगर मम्मा एंग्री होकर बेबी को छोड़कर चली गई तो? शान ने अब झूठमूठ का मुंह फुलाते हुए कहा, मम्मा कहीं नहीं जाएंगी, ये आपके डैडू का प्रॉमिस है अपनी प्रिंसेस से, पर डैडू आज अंशु से एंग्री है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे सच में उससे नाराज हो। अंशिका ने उसकी बात सुनी तो बड़ी ही मासूमियत से बोली, डैडू बेबी से एंग्री क्यों है, आज तो बेबी ने कुछ शरारत नहीं की, छाया दीदी को तंग भी नहीं किया, आज बेबी मम्मा के साथ थी तो एकदम नाइस गर्ल बन गई थी, फिर डैडू अंशु से एंग्री क्यों है? उसके सवाल को सुनकर शान ने नाराजगी से कहा, जब से आपकी मम्मा आई है आप अपने डैडू को भूल गई हैं, इसलिए डैडू आपसे नाराज है। अंशिका ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, नो डैडू, अंशु ना मम्मा और डैडू दोनों को इक्वल लव करती है, बेबी डैडू को भूली नहीं है। उसका प्यारा सा चेहरा इस वक्त और भी प्यारा लग रहा था। शान को उस पर ढेर सारा प्यार आ रहा था, लबों पर मुस्कान फैलने को तैयार थी, पर उसने उसे रोका और अब भी नाराजगी से बोला, अच्छा अगर आप डैडू और मम्मा से इक्वल लव करती है तो आपको प्रूफ करना होगा, अब सुबह से अपनी मम्मा के साथ थी, अब आपको डैडू के साथ रहना होगा, उनसे बातें करनी होंगी, उनके साथ प्ले करना होगा। उसने इतना कहा था कि अंशिका ने एक्साइटेड होकर उसकी गर्दन में अपनी छोटी छोटी बाहों को लपेट दिया और अपनी मोहिनी मुस्कान अपने लबों पर बिखेरते हुए बोली, ओके डैडू, अब अंशु डैडू के साथ खूब सारा प्ले करेगी और बहुत सारी बातें भी करेगी। पता है आज मम्मा ने बेबी को 3-3 स्टोरी सुनाई, बहुत नाइस स्टोरी थी, अंशु डैडू को भी सुनाएगी। शान ने तो अंशिका का दिल बहलाने के लिए सब नाटक किया था ताकि उसके दिमाग से आरवी का ख्याल निकल जाए, पर अंशिका ने एक बार फिर आरवी को बीच में लाकर खड़ा कर दिया था जिस वजह से शान चिढ़ गया था, पर अभी उसके लिए अपनी बेटी के साथ वक्त बिताना ज्यादा जरूरी था, इसीलिए उसने उस बात को जाने दिया। उसने मुस्कुराकर अपने सर को हिलाना शुरू करते हुए कहा, अच्छा तो बेबी डैडू को स्टोरी सुनाएंगी, चलिए सुनाइए, डैडू सुन रहे हैं। उसके गीले बालों का पानी अंशिका के चेहरे पर गिरने लगा। अंशिका ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और सर पीछे करते हुए बोली, नो डैडू, बेबी वेट हो जाएगी। कोई बात नहीं, डैडू बेबी की ड्रेस चेंज कर देंगे, पर अभी तो डैडू को अंशु के साथ ढेर सारी मस्ती करनी है। ये कहते हुए उसने चेहरे को अंशिका के पेट पर रगड़ा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने शान के बालों को बिगाड़ दिया। इसके बाद शुरू हुई दोनों की मस्ती। दोनों पूरे रूम में भाग रहे थे, जो हाथ में आता वही दूसरे पर फेंक देते। शान उस पर पिलो फेंकता तो अंशिका भी उसको पिलो से मारती और खिलखिलाकर हंस देती तो शान मुस्कुरा देता। कुछ ही देर में उन्होंने पूरे कमरे को युद्ध का मैदान बना दिया था। शान उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था और अंशिका फुल स्पीड में दौड़े जा रही थी। आधे घंटे से भी ज्यादा देर तक उनकी मस्ती चलती रही। आखिर में शान ने उसकी कमर पकड़कर उसको उठा लिया और बेड पर बिठाया तो अंशिका हंसते हुए फिर से भागने लगी, पर शान ने उसको पकड़ लिया। एक बार फिर अंशिका ने पिलो उठाकर उसके साथ फाइट शुरू कर दी। शान कुछ वक्त तक यूं ही उसके साथ खेलता रहा, फिर उसको अपनी गोद में उठा लिया और उसको जी भरकर प्यार करने लगा। यही वो पल था जिसका इंतजार अंशिका सुबह से करती थी, जब शान फ्री होकर उसके साथ खेलता था, उसे ढेर सारा प्यार करता था। वो बेहद खुश थी। घंटों उनकी मस्ती चलती रही। नीचे आरवी कुछ देर तो शांति से स्टोरी सुनती रही, पर फिर उसे अंशिका की चिंता होने लगी कि अगर वो उठ गई और वो उसे उसके पास नहीं मिली तो वो कहीं रोना ना लगे। सोते वक्त भी अंशिका ने बहुत बार उससे पूछा था कि उसके सोने के बाद वो उसे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। उस छोटी सी बच्ची के अंदर उसे खोने का कितना डर था, यही ये बताने के लिए काफी था कि उसे अपनी माँ की कमी कितनी खलती थी। आरवी ने बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया था, पर अब उसे चिंता हो रही थी। शाम भी गहरा गई थी। शाम के 7 बज गए थे। बाहर अंधेरा हो गया था तो सभी अंदर आ गए।
आरवी की नजरें रह रहकर सीढ़ियों की तरफ घूम रही थीं, जिसे अर्पिता जी नोटिस कर रही थीं, और शायद वो उसकी परेशानी और उलझन दोनों ही समझ रही थीं। आखिर में उन्होंने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, बेटा आप एक बार जाकर अंशिका को देखाइए, अगर जाग गई और आप उन्हें नहीं मिली तो रो रोकर सारा घर सर पर उठा लेंगी। उनके इतना कहते ही आरवी झट से उठकर खड़े होते हुए बोली, जी बड़ी माँ। वो तुरंत आगे बढ़ गईं, क्योंकि चाहती तो वो भी वही थी। कुछ कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ देर पहले कैसे शान ने उसको धक्के मारकर अपने कमरे से बाहर निकाला था। ये याद आते ही उसके कदम रुक गए। उसको खड़े देख अर्पिता जी ने पीछे से कहा, क्या हुआ बेटा, आप रुक क्यों गए? उनकी आवाज़ सुनकर आरवी ने खुद को संभाला, फिर उनकी तरफ मुड़ते हुए बोली, मुझे नहीं जाना है उसके साथ, मिस्टर मल्होत्रा हैं, वो उन्हें संभाल लेंगे। अर्पिता जी सब समझ रही थीं। उन्होंने आगे कहा, अगर वो है भी तो क्या हुआ, वो उसके पिता हैं और आप उनकी उसकी माँ। जाकर देखिए वो उठी या नहीं, आज बहुत देर हो गई, हमने अपनी प्रिंसेस को देखा नहीं है, जाइए उन्हें लेकर आइए। उनकी बात सुनकर अब आरवी अपने दिल को मजबूत करके आगे बढ़ गए। उसे उस कमरे में जाने में अजीब लग रहा था, पर अर्पिता जी की बात काट भी तो नहीं सकती थी। वो रूम के बाहर पहुंची तो दरवाज़ा खुला होने की वजह से नज़रें अंदर चली गईं, जहां शान बेड पर लेटा हुआ था, अंशिका उसके पैर पर बैठी हुई थी और शान उसको झूला झूला रहा था। साथ ही अंशिका उसको कहानी सुना रही थी। दोनों के लबों पर प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी। आरवी दरवाजे पर ही रुक गई। उसने पूरे दिन में पहली बार शान के लबों पर मुस्कान देखी थी, या ये कहें कि पहली बार उसने ध्यान दिया था कि वो सच में कितना हैंडसम है। उसकी मुस्कान में चुंबकीय प्रभाव था, शायद तभी इतनी लड़कियां उसके पीछे पागल थीं। आरवी बड़े गौर से उसे अंशिका के साथ मस्ती करते देख रही, साथ ही मन ही सोच रही थी, कितने खुश हैं आप अंशिका के साथ, बहुत प्यार करते हैं ना आप अंशु से, शायद आपकी मुस्कान सिर्फ उसी के लिए है। आप इंसान कैसे हैं मैं नहीं जानती, अभी तक आपको समझने का मौका ही नहीं मिला है। पति कैसे बनेंगे ये भी नहीं मालूम, फिलहाल तो आज इस रिश्ते को मानते ही नहीं हैं, फिर पति कैसे बन सकते हैं मेरे। पर आज मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप पिता बहुत अच्छे हैं। आरवी लबों पर प्यारी सी मुस्कान सजाए दोनों को देखने लगी। टू बी कंटिन्यूड।